अर्पा रेडियो से आज आप सुन रहे हैं भारतीय प्राचीन मनीषा कार्यक्रम में गीता ज्ञान। आज सुनिए वर्चस्व श्री दिनेश कुमार जी से कार्यक्रम का दूसरा भाग।
आई एम जस्ट देयर टू लव एवरीबॉडी, आई एम नॉट देयर टू स्केयर पीपल। मैं डराने के लिए नहीं हूं, मैं कल्याण के लिए हूं, मैं प्रेम के लिए हूं। अगर करुणा दया की सबसे ऊंची कल्पना मनुष्य को करनी है तो वो ईश्वरीय सत्ता से ही करनी है। उसके व्यवस्था में अगर कहीं कोई कठोर स्वरूप भी है तो वो भी कल्याण की दृष्टि से ही है। महान योगियों ने कहा है कि हमने पाप में ग्रस्त व्यक्तियों के पीछे भी ईश्वर के प्रकाश को खड़े देखा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि धीरे धीरे इससे बाहर आए, इससे उभरे और उभर करके इसका कल्याण हो। ये एक ऐसी घोषणा है जो पांचवें अध्याय के अंतिम श्लोक में बड़ी मुखर होकर आई है, जो प्राचीन भारतीय मनीषा की एक बहुत बड़ा आधारभूत स्तंभ है कि ईश्वर भय का नहीं, प्रेम का, कल्याण का स्रोत है। क्योंकि ये स्थापना आवश्यक इसलिए है क्योंकि मनुष्य नाना प्रकार से ईश्वर से जो रिश्ता बना लेता है वो भय के कारण भी बना लेता है, डरते हुए, ये मानते हुए कि कहीं मेरा कोई अकल्याण ना कर दे, इसलिए मैं इसकी पूजा उपचार करता रहूं। और जब जब हम ईश्वर से डर करके उसे रिझाने के लिए पूजा उपचार करते हैं तब तब हमारी प्रगति अवरुद्ध होती है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल कुछ और ही है। वास्तविकता यही है कि उसने कल्याण के लिए एक सिस्टम रचा है, और कल्याण के लिए रचे गए सिस्टम के अंतर्गत अगर जेल भी है तो उसका नाम भी सुधारा गृह होता है। यह ठीक है कि जिसे हम जेल कहते हैं, जो किसी को दंड स्वरूप वहां भेजा जाता है, पर अंतोदगत्वा वो कॉन्सेप्ट भी सुधारा गृह के आधार पर ही रचा गया है कि मनुष्य को किसी प्रकार से बदला जा सके। अगर प्रेम से नहीं बदलता, विचार से नहीं बदलता, तो क्यों ना किसी प्रहार से भी बदलने की चेष्टा की जाए। अंतोदगत्व दृष्टि सुधार की है, और परम सत्ता तो हर अवस्था में मनुष्य का कल्याण, उसका उत्कर्ष चाहती है। तो प्राचीन भारतीय मनीषा के अंतर्गत हमारी सनातन सोच में जो आधार है वो ईश्वर के प्रति कल्याण का, प्रेम का है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें से निकल के आता है वो है सर्व लोक महेश्वरम। वो कल्याण का स्रोत है, वो सबको प्रेम करता है। नथिंग एक्सेप्ट लव, अनकंडीशनल लव है उसका सबके लिए। और वो कौन है? उसकी सत्ता की उन्होंने पहुंच दिखाई है कि आपकी कहां तक चलती है, आपका कहां तक नियंत्रण है, आप कहां तक व्याप्त हैं, उसकी अवस्था को उन्होंने बताया। सर्व लोक लोक का तात्पर्य है अस्तित्व के जितने भी स्तर हैं। एग्जिस्टेंस एट ऑल डायमेंशन, जहां कहीं भी, जिस किसी अवस्था में भी, चाहे वो सात लोक नीचे के हों, चाहे सात लोक ऊपर के हों, चाहे स्पेस में अनगिनत अखंड आकाश गंगाएं हों, कहीं भी हो, सर्वलोक, वेर एवर, वॉट एवर, सर्वलोक में सब कुछ आ गया। उसमें भूत भी आ गए, पिशाच भी आ गए, किन्नर भी आ गए, गंधर्व भी आ गए, यक्ष भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, देवता भी आ गए, ऋषि भी आ गए, और जो हमें नहीं भी ज्ञात वो सब आ गए। महेश्वरम, उन सब का वो ईश्वर है। ई शब्द कहते हैं डिसिप्लिन को, डिसिप्लिन अनुशासन, जो इन समूचे एग्जिस्टेंस के अनुशासन को वहन करता है, जो उन्हें नियंत्रित करता है, जो उन्हें संभालता है, वो है सर्व लोक महेश्वरम। उसकी सत्ता की पहुंच को इतना बड़ा व्यापक स्वरूप संस्कृत के एक छोटे से शब्द ने दे दिया है, सर्वलोक महेश्वर, समूची एक्जिस्टेंस, उन सब के अनुशासन का, उन सब के संविधान का, उन सब की संरचना का, अगर कोई एक इष्ट है, अगर कोई एक रचयिता नियंता है, तो वो मैं हूं। ये कृष्ण अपनी वाणी से गीता में व्यास के माध्यम से व्यक्त करते हैं। मैं सबको प्रेम करता हूं, आई लव ऑल अनकंडीशनली, और मेरी अवस्था सर्व लोक में अब, अर्थात इन ऑल काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस, ऐसे अस्तित्व जो हमें मालूम है और ऐसे अस्तित्व जो हमें मालूम नहीं है, वो सारे अवस्थाएं जो हमें आंखों से दिखती हैं, वो सारी अवस्थाएं जो हमें आंखों से नहीं दिखती हैं, इवन एट द माइक्रोब लेवल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल तक की व्यवस्था का नियंता, उसके डिसिप्लिन का, उसके ईश का वर है वो। ये दूसरी घोषणा जो श्लोक के माध्यम से बड़ी मुखर होकर के आती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक, जिसकी चर्चा होना आवश्यक है, वो है भोक्ता रम यज्ञ तपसाम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुम जितने भी कर्म करते हो, चाहे वो कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, संन्यास योग है, अर्थात एनीथिंग दैट यू डू, उन सभी को मैं प्राप्त करता हूं, उसे मेरे को ही प्राप्त करना होता है। हम जिसे अपना पुण्य कर्म मान करके करते हैं, हम चाहे गायत्री का जप करते हैं, हम चाहे शिव का जप करते हैं, दुर्गा की स्तुति करते हैं, या हम किसी प्रकार की उपासना करते हैं, या हम केवल अच्छे सत्कार्य करते हैं, कल्याण के कार्य करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, वो सभी कुछ मैं प्राप्त करता हूं। ये कृष्ण व्यास के माध्यम से गीता में व्यक्त होते हैं। ये बात एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन को जन्म देती है। और वो प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये है, अगर हमारा हर कर्म ईश्वर को ही प्राप्त होना है, हमारा हर कार्य अगर ईश्वर को ही प्राप्त होना है, तो ऐसी अवस्था में हर कार्य, हर कर्म करते समय हमें बहुत विचार करके चलना है। बेटा वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा। हर कार्य करते समय हमें यह गहरा विचार करके चलना है कि जिस को प्राप्त होना है, मेरे किसी कर्म का प्रतिफल, फल या अर्पित होना है, वो कोई और नहीं, सुहृदम भूतानाम सर्वलोक महेश्वरम है। आज मैंने अगर कोई दान किया, आज मैंने कुछ भी अर्पित किया, वो अंतोदगत्वा कौन रिसीव करने वाला है? इसे हम छोटे से स्तर से यूं समझें, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा अगर पानी का ग्लास मांगता है, तो हम पानी ले जाते हैं और कहते हैं ये लो पानी लो। और मान लीजिए कोई श्रद्धा का कोई ऐसा स्रोत हमारे सामने आ जाए, चाहे वो हमारे सद्गुरु हो, हमारे पुराने अध्यापक हो, हमारे पिताजी हो, और वो कहेंगे पानी पिलाओ, तो हम लोग कैसे पानी पिलाते? हम लोग निश्चित रूप से पूरे सत्कार के साथ, भारत में विशेष रूप से, मैं बाहर की नहीं बात करता, भारत में हम विशेष रूप से पानी तो यूं भी दिया जा सकता है, हम लोग एक आउट ऑफ एक्सट्रीम सबमिशन, कंसर्न, रिस्पेक्ट, हम लोग ये हाथ नीचे लगाते हैं और इस प्रकार से देते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? ग्लास थामने में दायां हाथ सक्षम है, सबल है, ग्लास कोई 2 टन का नहीं है, 200-250 ग्राम पानी उसमें आया, ये रखा। पर नहीं, जब ये हाथ साथ में आता है और ग्लास यूं दिया जाता है, तो कहीं से कहीं तक वो छोटा सा कर्म ऑफ ऑफरिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वो एक बहुत बड़े महत्व को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसको हम पानी पिलाने जा रहे हैं, उसने पीना तो पानी है, ग्लास एक माध्यम है, पर हमारा समर्पण इस भाव से होना चाहिए कि आउट ऑफ ग्रेट सबमिशन, संपूर्ण समर्पण के साथ, बहुत श्रेष्ठतम भाव के साथ हम ये कर रहे हैं। जब भी हम ये करते हैं, तो उस समय हमें यही ध्यान रखना है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। आपके सभी यज्ञ, आपके सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के तप का भोक्ता, उनको भोगने वाला कोई और नहीं, बस सर्वलोक महेश्वरम है।
आज आप सुन रहे थे भारतीय प्राचीन मनीषा कार्यक्रम में गीता ज्ञान श्रृंखला का दूसरा भाग।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।